आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धर्सेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 14वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणाखंड, उसमें बंधन अनुयोग द्वार की अपनी चर्चा चल रही है। अब हम उसमें से ये जो भेद से संघात से आदि आदि बातें चल रही है ना, वर्गना निरूपणा तो हो गई थी अपनी, और उसके बाद अपनी चर्चा चल रही है वर्गना देश आदि के बारे में। 136 पृष्ठ पर आए हम। देखो अभी थोड़ा हम क्या क्या पढ़ा उसको देखते हैं ना, बहुत दिन बीत गए। पहले यहाँ ये बात चल रही है 23 वर्गनाओं की। हमने उसके नाम देखे थे, अनुवर्गणा, संख्यात अनुवर्गणा, असंख्यात अनुवर्गणा, अनंत अनुवर्गणा, आहार वर्गणा वगैरह वगैरह, और उसके बीच बीच में अग्राह्य वर्गणा भी देखी थी। उसके बाद अभी ये जो उसको यहाँ एक श्रेणी वर्गणा कहा था, देखो अभी हम यहाँ देखते हैं, एक श्रेणी वर्गणा जो है ना 118 तक पूरी हुई थी, उसके पहले 117 पृष्ठ निकालना। ये जो हमने पढ़ा था उसका सारांश वहां दिया है। आवाज बराबर आ रही? देखिए 7 और 8 नंबर की गाथा में 23 वर्गणाओं के नाम देखे। देखो फिर हम देखते हैं अनुवर्गणा, संख्यात अनुवर्गणा, असंख्यात अनुवर्गणा, अनंत अनुवर्गणा, आहार वर्गणा, फिर अग्राह्य वर्गणा, तेजस वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, भाषा वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, मनोवर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, कार्मण वर्गणा, यानी जो 5 जीव के द्वारा ग्राह्य वर्गणाएं हुए उसके बीच बीच में अग्राह्य वर्गणाएं हैं। उसके बाद ध्रुव स्कंध वर्गणा, शांत निरंतर वर्गणा, शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा, शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, शून्य वर्गणा और महास्कंध वर्गणा। ये जो वर्गणा वो कैसे तैयार होती है, ऐसा प्रश्न फिर निकला था। ये किसके किसके होती है उसमें जघन्य उत्कृष्ट, उसकी तो बात हमने विस्तार से देखी थी। फिर प्रश्न उठा था ये कैसे तैयार होती है, तो भेद से या संघात से या भेद संघात से, ऐसे 3 ऑप्शंस होते हैं। तो हर एक वर्गणाओं के बारे में हमने देखा था कैसे कैसे होती है। देखिए ये यहाँ 120 पृष्ठ पर वर्गणा निरूपणा की अपेक्षा जहाँ बात की थी, तो ये जो अभी हमने 23 वर्गणा देखी वो कैसे तैयार होती है, तो प्रश्न पूछा था भेद से होती है, संघात से होती है, या भेद या संघात से होती है, भेद संघात से होती है। तो वहां परमाणु की बात हुई थी तो उसको वो भेद से उत्पन्न होते ऐसा बताया था। उसको भी किसके भेद से, तो ऊपर के द्रव्यों के भेद से, ऊपर यानी संख्यात अनुवर्गणा आदि जो वर्गणा है उनका भेद होने पर वो एक पुद्गल परमाणु अलग पड़ता है, तो उसको कहते हैं भेद से होती है। फिर 100 नंबर के सूत्र में 121 पृष्ठ पर पूछा था कि द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गना भेद से होती है कि संघात से, के भेद संघात से। तो भी उसकी जो ऊपर वाली वर्गनाएं हैं उसको ऊपर का द्रव्य कहा, यानी द्वि अणुवर्गना है तो चार अणुवर्गना होगी या तीन होगी या संख्या जो कुछ है उनके भेद से होगी या परमाणुओं के संघात से होगी या अन्य द्विप्रदेशों के भेद संघात से होगी। अब फिर आगे हम आते हैं, त्रिप्रदेशी चार प्रदेशी पांच प्रदेशी उसमें ऐसे ही समझना, ऊपर ऊपर के द्रव्यों के भेद से, नीचे के द्रव्यों के संघात से और उतनी ही संख्या वालों के भेद संघात से। अब यहां आते हैं हम 125 पृष्ठ पर, आहार वर्गना से लेकर ध्रुव स्कंद वर्गना तक सभी के नाम लिए तो उसको कहते हैं भेद से होते, संघात से होते, भेद संघात से होते। तो फिर उसका 105 में उत्तर दिया था, ऊपर के द्रव्यों के भेद से, नीचे के द्रव्यों के संघात से और स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। अब ये जो शांत ध्रुव स्कंद तक देखे ना अभी हमने, वही रूल लगा शांत निरंतर में क्या होगा। तो देखो शांत निरंतर द्रव्य वर्गना भेद से होती के कैसे होती है, 107 में उसका उत्तर दिया था, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है क्योंकि अभी शांत निरंतर के ऊपर कौन कौन सी वर्गनाएं हैं। देखो अपना अभी हमने जो लिस्ट देखी थी ना 117 पर देखी थी, शांत निरंतर के बाद ऊपर तो शून्य वर्गनाएं, शून्य वर्गना वाले तो कोई पुद्गल परमाणु एग्जिस्टिंग ही नहीं है। हाँ तो कौन सी है, प्रत्येक शरीर वर्गनाएं, बादर निगोद वर्गनाएं और सूक्ष्म निगोद वर्गनाएं, बाकी जो शून्य शून्य है उसको तो लेना ही नहीं है, वो तो है ही नहीं है। और एक है वो महास्कंद वाली। तो यहाँ प्रश्न है, ये जो शांत निरंतर वर्गनाएं हैं वो क्या बादर निगोद वर्गना, प्रत्येक शरीर वर्गना, वो सूक्ष्म निगोद वर्गना, उनसे होती है कि नहीं होती? तो वे जो वर्गनाएं हैं वे सचित्त वर्गना है, इसलिए उसमें से ये शांत निरंतर वर्गना जो अचित्त वर्गना है वो नहीं हो सकती, ये बात उन्होंने बताई। देखो हम यहाँ आए थे ना अभी पढ़ते पढ़ते, हाँ 126 नंबर पर, 107 का हमने अभी देखा स्वस्थान की अपेक्षा, उसकी बात चल रही है कि प्रत्येक शरीर बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद वाली जो वर्गना है उनके भेद से ये शांत निरंतर वर्गना उत्पन्न नहीं होती, उसका कारण अगले पृष्ठ पर दिया है 126 पर। देखो पहले ही लाइन में, क्योंकि सचित्त वर्गनाओं का अचित्त वर्गना रूप से परिणमन होने में विरोध है। अब ये यहीं पर पांचवी लाइन, तो ये सचित्त से नहीं होते वो तो ठीक, पर ऊपर एक महास्कंद वाली वर्गना भी है ना, तो पांचवी लाइन में लिखा है महास्कंद के भेद से इस वर्गना की उत्पत्ति होती यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे जो भिन्न हो जाएंगे है उसका कारण मिले। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि महास्कंद से अलग हुए स्कंद यतः महास्कंद के भेद से अलग हुए हैं अतः उनकी महास्कंद संज्ञा नहीं हो सकती। महास्कंद तो एक ही रहता है, उसमें से निकल जाए तो महास्कंद ही बाकी रहा और जो बाहर निकले हैं उसको महास्कंद भी नहीं कहेंगे, इसलिए महास्कंद के भेद से उत्पन्न होती है ऐसा कहना युक्त नहीं है। अब उसमें और नीचे चार लाइन नीचे आना, देखो महास्कंद जहां लिखा ना वहां से पांचवी लाइन, द्रव्यार्थिक ने का अवलंबन करने पर ऊपर की वर्गनाओं के भेद से भी यह वर्गना होती है, क्योंकि भेद होने पर वो सचित्त में से निकल जाए तो वो सचित्त नहीं रहती, भेद हो जाता है बाद में उस ऊपर से बन जाती है। अब हम यहां आते हैं 127 पृष्ठ पर, एक सौ आठ में लिखा था कि ऊपर के द्रव्यों के भेद से, नीचे के द्रव्यों के संघात से और स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है, यह पाठ अनेक शास्त्रों में मिलता है, तो ये सामान्य उन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। अब आगे 109 में शांत निरंतर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद से संघात से होती है, प्रत्येक शरीर वर्गणा कैसे तैयार होती है, उससे पूछा है। तो पता है उसका उत्तर 110 में, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। वहां प्रश्न पूछा गया था आहार वर्गणा के संघात से तो होगी, आहार वर्गणा मिलकर प्रत्येक शरीर वर्गणा हो जाएगी, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? प्रत्येक शरीर वर्गणा किसे कहता याद है? और प्रत्येक शरीर वर्गणा होती किससे है, पहले इसको देखेंगे। प्रत्येक शरीर वालों को होगी, परंतु जो प्रतिष्ठित प्रत्येक है उसको यहां नहीं लेना। प्रतिष्ठित प्रत्येकों को बादर निगोद वर्गणा में लेंगे हम। तो यहाँ कौन से ऐसे जीव की जिनको प्रत्येक शरीर होता है, और उस हाँ देव है, नारकी है, ये चार एकेंद्रीय है, और फिर 13वें 14वें वाले, इसको लेना। तो उसमें भी पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक आदि जो जल कायिक है, उनके समूह के समूह होते हैं। एक एक जीव को वहां लिया नहीं था, सबका मिलकर एक स्कंद बनता है, इसलिए उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा था। तो उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो जो वर्गणा जो है ना, आहार वर्गणा, तो आहार वर्गणा औदारिक शरीर रूप से परिणमित हो जाती है। आहार वर्गणा से डायरेक्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं बनती है। प्रत्येक शरीर वर्गणा में तो हमने तेजस, कारमान और औदारिक शरीर का, जो परम औदारिक उसका समूह, या वो वैक्रिक वाला है, या एक इंद्रियों का, इस पूरा समूह को जो है एक बंधन रूप जो है उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा था। नहीं लेना, वो बादर निगोद वर्गणा में चला जाएगा। इसलिए केवल आहार वर्गणा अभी कितनी पड़ी है पूरे विश्व में, तो उनका भी समूह है, उसको हम प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कह सकते, क्योंकि वहां आहार, यानी आहार वर्गणा भी पड़ी है, कारमान वर्गणा भी है, तेजस वर्गणा भी है। वर्गणाओं को प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कहा। जीव उसको ग्रहण करता है तो वो शरीर रूप से परिणमित हो जाती है। तो तेजस शरीर, कारमान शरीर, और औदारिक परम औदारिक कहो, या एक इंद्रियों का औदारिक कहो, या देवनारकियों का वैक्रिक ले लो, जीव ने ग्रहण करने के बाद वो शरीरों का जो समूह हो जाएगा एक बंधन रूप, उसको यहाँ प्रत्येक शरीर वर्गणा कहने में आएगा। बहुत दिन हुए ना हमको पढ़कर, इसलिए यहाँ पूछा था। देखिए ये शंका हम लेते 128 पृष्ठ की। आहार द्रव्य वर्गणा, तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा, और कारमान शरीर द्रव्य वर्गणा के पुद्गल स्कंधों के योग और कषाय के वश से प्रत्येक वर्गणा रूप से बंध को प्राप्त होने पर उनसे अन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा की उत्पत्ति होती है। अतः नीचे के द्रव्यों के संघात से प्रत्येक शरीर वर्गणा की उत्पत्ति क्यों नहीं कही जाती? क्योंकि जीव ने इन तीनों को लिया है ना, वर्गणाओं को लिया है, इसलिए शंकाकार को ऐसा कहना है कि उनके संयोग से ही तो हो गए ये प्रत्येक शरीर वर्गणा। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गणा के समागम के बिना केवल नीचे की वर्गणाओं के समुदाय समागम से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक शरीर वर्गणाएं नहीं उपलब्ध होती। दूसरे, योग के वश से एक बंधनबद्ध औदारिक तेजस और कार्मण परमाणु पुद्गल स्कंध अनंतानंत विसरसोपचयों से उपचित होते हैं। यानी वो मात्र तीन ही शरीर नहीं, उसके विसरसोपचय सहित वाला ये जो पूरा जो स्कंध बन जाता है उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहने में, हमने देखे थे ना 6 पुंज हमने देखे थे, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक हम जब देखते थे तो पहले विसरसोपचय वाला पुंज बढ़ाते गए, फिर औदारिक शरीर का एक परमाणु बढ़ाया, इस तरह से। तो ये मात्र उनके समूह को नहीं कहा है, जीव ने उनको ग्रहण किया है, वहां जीव का भी योग है, और उसको फिर उसके औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारवान शरीर रूप से परिणमित हुआ है और जीव के साथ वो जुड़ा है तो उसको सचित्त कहने में आता है। अब यहाँ फिर यह आगे आते हैं, वह 129 पृष्ठ पर पहली लाइन यहाँ लिखा ना, हाँ, 12वें गुणस्थान 13वें में प्रत्येक शरीर वर्गना हो जाती है क्योंकि उसमें से निगुण निकल जाते हैं। हमने देखा था ना 12वें गुणस्थान में, वो तो शुरू में वो तो असंख्यात भाग अधिक 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 होता है, फिर बाद में असंख्यात गुणा हो जाता है। यानी मात्र ये आहार वर्गना, कारमाण वर्गना, इनके समूह को प्रत्येक शरीर वर्गना नहीं कहते क्योंकि वो तो जीव के साथ जुड़े हुए नहीं है। जीव उसको ग्रहण करता है और उसको एक बंधन रूप होती है तब उसको ये प्रत्येक शरीर वर्गना कहने में आता है। देखो ये 128 का अंतिम लाइन बीच से ही है ना, जीव से अलग होने के काल में उनका एक बंधन नहीं होता, वो सारी वर्गणाएं पड़ी है अलग अलग रूप से, एक बंधन में बद्ध नहीं है। इसलिए नीचे की वर्गणाओं के संघात से प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं उत्पन्न होती। संघात यानी उनका यूनियन, उनकी जो बंधन, उनका जुड़ जाना। अब दूसरा एक वाक्य यहाँ लिखा है, देखो तीसरी लाइन में, ऊपर के द्रव्यों के भेद के बिना प्रत्येक शरीर वर्गना उत्पन्न होती है। ऊपर कौन सी है? बादर निगोद वर्गना है, सूक्ष्म निगोद वर्गना है, तो क्या उनका भेद होकर प्रत्येक शरीर वर्गना होती है क्या, ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो नहीं होती, उसके भेद के बिना होती है, लिखा ना यहाँ पर। हाँ, यानी उन्होंने जो लिखा था कि भेद संघात से ही प्रत्येक शरीर वर्गना होती है, तो प्रत्येक शरीर वर्गना का ही भेद होकर अन्य उसको जुड़कर वो प्रत्येक शरीर वर्गना होती है, ये इसमें से निष्कर्ष निकला। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक सौ ग्यारह में फिर पूछा है, प्रत्येक शरीर वर्गना के बाद ऊपर कौन सी वर्गना है? बीच में शून्य वर्गना है, उसको तो लेना ही नहीं है, बादर निगोद वर्गना है, तो वो भेद से होती है कि संघात से होती है कि भेद संघात से होती है? 112 में उत्तर दिया है, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है, उसका हम स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। देखो, नीचे की वर्गणाओं के संघात से तो बादर निगोद वर्गना उत्पन्न होती नहीं क्योंकि अचेतन वर्गणाओं के समुदाय समागम से सचेतन वर्गणाओं की उत्पत्ति होने में विरोध है। ये रूल उन्होंने पहले भी बताया था, उल्टा बताया था, सचित्त में से नहीं अचित्त बनती। यहाँ कहते अचित्तों के समुदाय से सचित्त होगी, ये भी बात नहीं बन सकती। अब आगे पढ़ते हम, तो कहते ऊपरी वर्गणा के भेद से तो होगी, तो ऐसा भी नहीं है। 131 पृष्ठ पर ये शंका समाधान के नीचे एक पैराग्राफ है ना, महास्कंद द्रव्य वर्गणा के भेद से बादर निगोद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती। क्यों? क्योंकि एक तो उसका विनाश नहीं होता, किसका? महास्कंद का, और दूसरी बात, अचित्त का सचित्त रूप परिणमन होने में विरोध है। इसलिए बादर निगोद वर्गणा उत्पन्न कैसे होती है? तो स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से उत्पन्न होती है। अब हम आगे बढ़ते, 113 में पूछा है, सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणा भेद से होती है कि संघात से? उसके भी उत्तर में कहा था भेद संघात से होती है। देखिए उसके उत्तर में हम पढ़ते हैं, बादर निगोद वर्गणाओं के संघात से एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा नहीं होती, यानी उनको मिलकर एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा होती होगी तो ये भी बात नहीं है। उसका कारण बताते, क्योंकि एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा में जितने जीव हैं उतने बादर निगोद जीवों के द्वारा आरंभ की गई सूक्ष्म निगोद वर्गणा का अभाव है। सूक्ष्म निगोद वर्गणा कहते हैं तो सूक्ष्म निगोद में वहां पर बहुत ज्यादा जीव है ना, तो उनके संघात से, बादरों के संघात से सूक्ष्म निगोद वर्गणा होती, ये बात नहीं बन सकती। दूसरी बात उन्होंने इसी में बताई है कि महास्कंद के भेद से भी नहीं बनती, क्योंकि ये सचित्त वर्गणा है और वो अचित्त वर्गणा है और उसका भेद नहीं पाया जाता। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हमने रिवीजन की यहां तक। हाँ, जीव के ग्रहण के बाद उसमें परिणमन होता है ना, वर्गणा में से शरीर बन जाता है, जैसे कारमाण वर्गणा है और वो कर्म रूप परिणमित हो जाती है, तो जीव के साथ जुड़ी है, उसके विसरसोपचय भी है उसके साथ, और वो कर्म कारमाण शरीर अकेला ही नहीं है, वहां तेजस शरीर भी है, औदारिक शरीर भी है, सबका मिलकर उसकी वर्गणा कहने में आती है। और वो भी बादर निगोदों से प्रतिष्ठित है, तो वो बादर निगोद के भी वहां औदारिक तेजस कारमाणिक के पुंज होंगे, तो सबका मिलकर जो स्कंद है उसको बादर निगोद वर्गणा कहते हैं। ऐसे ही सूक्ष्म निगोद वाले जो जीव है उनका जो एक बंधन रूप जो स्कंद पाया जाता है उसको सूक्ष्म निगोद वर्गणा कहते हैं। आपका प्रश्न है तद्भव मोक्षगामी जीव की कौन सी वर्गणा है, तो शुरू में तो बादर निगोद वर्गणा, और क्षीण कषाय का अंत समय बीत गया, तेरवे का पहले समय से वो प्रत्येक शरीर वर्गणा होगी, क्योंकि बादर निगोद निकल गए वहां से, अब प्योर प्रत्येक शरीर रहा उसका। पहले तो अन्य त्रस जीव भी होंगे ना वहां पर, अन्य त्रस जीव हो गए तो उनके शरीर में बादर निगोद वर्गणा पाई जाएगी। यानी केवली के ही शरीर से निकल जाते हैं केवल निगोद, ऐसा नहीं है, उनके शरीर के आधार से कोई त्रस भी नहीं रहेंगे वहां पर। जैसे हमारा प्रत्येक शरीर है, परंतु पेट में जो कुछ होगे कि नहीं वहां पर, अभी हम ये 115 में पढ़ते, 133 पृष्ठ पर 115 सूत्र। ये महास्कंद द्रव्य वर्गणा भेद से होती है कि संघात से होती है? हाँ, प्रत्येक शरीर तीनों ही जो है ना सचित्त वर्गणा, वो भेद संघात से ही होती है, अपने अपने स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात। हाँ, बारहवें के अंत तक बादर निगोद निकल गए हैं, बादर निगोदों का वहां कारमान तेजस शरीर जो पहले हम गिनते थे अभी कुछ नहीं रहा, वो पहले बादर निगोद जीव भी थे वहां पर, अनंत जीव थे, उनके अपने अपने औदारिक शरीर और उनके विसरसोपचय तेजस शरीर कारमान शरीर सबका एक पुंज था, अभी वो सब निकल गए, अब प्योर प्रत्येक शरीर रहा उनका, इसलिए उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा। हाँ, अभी वहां सूक्ष्म भी वहां हो गए, परंतु अभी वो उसके साथ जुड़े नहीं ना, तो हम नहीं कहेंगे उस। हाँ, दोनों है कब तक? बारहवें तक है, बारहवें तक तो बादर निगोद वर्गणा ही कहेंगे उसको, प्रत्येक शरीर के आधार से ही बादर है, बादर निगोद है, तो उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा भी है और बादर भी है ऐसा नहीं कहेंगे, बादर ही है उसको बारहवें गुणस्थान तक, बारहवें गुणस्थान तक उसी वो जो स्कंद है उसी को हम क्या कहेंगे? बादर निगोद वर्गणा, और वो बादर वर्गणा निगोद वर्गणा ही अभी क्या हो कहलाएगी? प्रत्येक शरीर वर्गणा। बादर निगोद वर्गणा में से नहीं बनी है, परंतु वहां बादर निगोद निकल गए हैं, तो अभी जो जो है उसको अभी प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे। यहाँ 115 में प्रश्न है, महास्कंद वर्गणा कैसे होती है भेद से के संगात से? वहाँ भी बताया स्वस्थान की अपेक्षा भेद संगात से होती है। उसके नीचे लिखा है देखो 116 के स्पष्टीकरण में, नीचे की वर्गणाओं के संघात से दूसरी महास्कंद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती है। क्यों? कि एक ही वर्गणा होती है, महास्कंद नाम की एक ही वर्गणा होती है। ये एक ऑलरेडी है और दूसरे संघात से बन जाए ऐसी बात नहीं बन सकती। अब हम आगे बढ़ेंगे। 134 पृष्ठ पर लिखा था, एक श्रेणी वर्गणा निरूपण पूरा हुआ और उसके बाद कहते हैं नाना श्रेणी प्ररूपणा इसी प्रकार कहनी चाहिए। वो तो अपना अनुयोग समाप्त हुआ वहीं पर। अब यहां हम आते हैं 135 पर, वहां लिखा है बीच में ही देखो समाधान की तीसरी लाइन, प्रश्न ऐसा 135 पृष्ठ, प्रश्न ऐसा पूछा था कि 16 अनुयोग द्वार कहेंगे ऐसा कथन तो आया था और दो ही अनुयोग द्वार होकर उन्होंने समाप्त हुआ ऐसा कहा, तो इसलिए कहते हैं ये देशामर्शक सूत्र है और उसमें से अर्थ निकाल कर अभी बताने वाले हैं। मिला? देखो इसलिए समाधान की तीसरी लाइन, बीच वाला समाधान है सेकंड समाधान, उसकी तीसरी लाइन, इसलिए पूर्वोक्त दो अनुयोग द्वारों का कथन देशामर्शक है ऐसा जानकर शेष 12 अनुयोग द्वारों का कथन करते। उन्होंने पहले 14 बताऊंगा कहा था, देखो 53 पृष्ठ पर बताया था, हाँ वहां देखते 75 नंबर का सूत्र, वो हम सूत्र पढ़ेंगे। वर्गणा द्रव्य समुदाहार का प्रकरण है, उसमें ये 14 अनुयोग द्वार, मैं अभी 16 कहा 14 थे, पहले में पहले वर्गणा प्ररूपणा वो अभी हमारी हो गई, वर्गणा निरूपण, निरूपण यानी भेद से होती है संघात से होते वो भी अभी हमने देखा। अब जो उन्होंने नहीं बताए और अभी खोल कर बताएंगे ये आगे वाले हैं, उसमें वर्गणा ध्रुवा ध्रुवानुगम, फिर वर्गणा सांतर निरंतरानुगम, वर्गणा ओज युग्मानुगम, वर्गणा क्षेत्रानुगम, वर्गणा स्पर्शानुगम, वर्गणा कालानुगम, वर्गणा अंतरानुगम, वर्गणा भावानुगम, वर्गणा उपनयानुगम, वर्गणा परिमाणानुगम, वर्गणा भागाभागानुगम और वर्गणा अल्प बहुत्व अनुगम। ये 14 में से दो वे बता चुके, अब जो बाकी है वो भी बताएंगे आचार्य। देखो यह था, वहीं से 135 पृष्ठ से हम पढ़ रहे हैं, एक श्रेणी वर्गणा ध्रुवा ध्रुवानुगम की अपेक्षा परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है? अभी हर एक वर्गणा पर वो ध्रुव है कि नहीं है, क्या ध्रुव है ये बताएंगे। ध्रुव है क्योंकि अतीत अनागत और वर्तमान काल में एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल वर्गणा का विनाश नहीं होता। देखो हम जैसे हम निरंतर मार्गणा देखते थे ने, वैसे यहाँ इसको ध्रुव कहा कि एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु जो वर्गणाएं हैं वो इस विश्व में पाई जाएगी कि कभी कभी उसका लोप भी हो जाएगा, तो कहेंगे हमेशा ही रहेगी, इसलिए उसको ध्रुव कहा। वे ही परमाणु रहेंगे ये बात नहीं है, परंतु अन्य अन्य उसमें परमाणु रूप से रहेंगे। देखो शंकाकार ने पूछ लिया है, ऐसा होने पर एक परमाणु का परमाणु रूप से सर्वदा अवस्थान प्राप्त होता है, जो परमाणु है वो हमेशा ही परमाणु रहेगा, तो कहते हैं यह दोष नहीं है क्योंकि एक परमाणु के नष्ट होने पर भी यह परमाणु कैसे नष्ट होगा, स्कंद हो जाएगा तो वो परमाणु रूप अनुवर्गणा नहीं रहेगी उसकी, ऐसे होने पर भी अन्य अन्य जो संघात से फिर परमाणु बनते रहेंगे, तद जातीय यानी उसी जाति के अन्य परमाणुओं के संभव होने से यानी वो प्राप्त होने से वो परमाणु रूप से हो जाने पर एक प्रदेशी वर्गणा के ध्रुव होने में कोई विरोध नहीं आता। फिर शंका, एक श्रेणी की प्ररूपणा में नाना श्रेणी रूप परमाणुओं का ग्रहण कैसे करते हैं? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसी परमाणु से एक श्रेणी का ग्रहण होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या कहते हैं, वो भेद से उत्पन्न हुआ ना, तो ये नाना श्रेणी हो गई, तो उसको क्यों लेते हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि विशिष्ट परमाणु से ही वो एक श्रेणी उत्पन्न होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखो, एक श्रेणी नाना श्रेणी यहां पूछा है 134 पृष्ठ पर। नीचे से दूसरी शंका, नाना श्रेणी किसे कहते हैं? उसका समाधान, सदृश धन वालों की मुक्ता फलों की पंक्ति के समान पंक्ति को नाना श्रेणी कहते हैं। अनुवर्गणा में हमने एक वचन बता दिया, ये अनुवर्गणा है, उसमें सभी परमाणु आ गए, और नाना श्रेणी ने उसमें अलग अलग अनुवर्गणा वाले कितने हो गए, तो अनंत हो गए, तो ये तो उसकी नाना श्रेणी हो जाएगी। एक एक ही वर्गणा में कितने कितने पाए जाते हैं, उसको नाना श्रेणी कहता है। ये पहले भी आनी चाहिए, एक मिनट हम देखते हैं। पहले एक श्रेणी नाना श्रेणी उन्होंने बताई थी, ये जो हमने 53 पढ़ा ना, उसके आगे पहले तो है ऐसे वर्गणा प्ररूपणा की, कि ये इसके ऊपर ये वर्गणा है, उसके ऊपर ये वर्गणा है। 100, हाँ, एक वर्गणा जो 23 नाम है ना, वो एक श्रेणी हुई, और एक 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 श्रेणी वालों में कितने कितने वर्गणाएं पाई जाती है, उसको नाना श्रेणी कहते हैं। जैसे महास्कंद कितने पाए जाएंगे, एक ही पाया जाएगा। इस तरह से हमने देखे थे कितने कितने पाए जाते हैं। मिला क्या? एक से 17 में है ना, वो कौन सी कितनी होती है? हाँ, उसी में 117। अभी हमने जो 7 और 8 नंबर का श्लोक पढ़ा था ना, उसके आगे मिला 117 पृष्ठ पर नीचे से चौथी लाइन, सारांश वहां दिया था उन्होंने। देखो तो अनुवर्गणा एक है, संख्यात अनुवर्गणा संख्यात गुणी है, असंख्यात अनुवर्गणा असंख्यात लोक गुणी है, वगैरह वगैरह। आहार वर्गणाएं कितनी पाई जाती है, तो अनंत पाई जाती है। इस तरह उन्होंने सभी का वो बात सभी की बताई थी। प्रत्येक शरीर वर्गणा कितनी होती है, तो पल्ले की असंख्यात विभाग होती है, ये वहां आ गई बात। अब हम यहां पढ़ते हैं 135 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे थे ना। देखें नीचे से दूसरी लाइन, द्विप्रदेशी वर्गणा से लेकर, एक प्रदेशी की बात बता दी उन्होंने, द्विप्रदेशी वर्गणा से लेकर ध्रुवस्कंद वर्गणा तक ये वर्गणाएं क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है, यहां पहले के समान कथन करना चाहिए, क्योंकि ध्रुवत्व के प्रति कोई भेद नहीं है। पहले से लेकर कौन से ध्रुवस्कंद वर्गणा तक, ध्रुवस्कंद वर्गणा कौन सी होगी, मेरे ख्याल से वो 15वीं है कि उसके बाद शांत निरंतर आती है। ये सारे आहार वर्गणा वगैरह वगैरह जो अग्राह्य वर्गणा सब होने के बाद ध्रुवस्कंद वर्गणा 14वें नंबर पर थी। तो वहां तक तो सभी ध्रुव हैं। अब आगे 136 पृष्ठ पर आ गए। अब पूछते हैं, सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणाएं अशून्य रूप है वे अशून्य रूप से ध्रुव है या अध्रुव है? देखो सांतर निरंतर में क्या है, बीच बीच में वो तो अशून्य, शून्य रूप से अशून्य रूप से ऐसे होती है। तो जो अशून्य है तो क्या कायम अशून्य ही रहती है, और शून्य वाली क्या कायम शून्य ही रहती है, ऐसा पूछा है? नहीं, देखो शून्य ने वहाँ कोई परमाणु उस उतने वर्गणाओं का या उतने परमाणुओं का समूह रूप कोई वर्गणा ही नहीं होती है, उसको कहते हैं शून्य वर्गणा, जो हमने आगे देखी थी, प्रत्येक शरीर वर्गणा और बादर शरीर वर्गणा के बीच में शून्य वर्गणा होती है। उस जाति के कोई परमाणु ही नहीं पाए जाते, फिर भी वो रेंज बतानी है ना, बीच में गैप कहाँ से कहाँ तक ही है। तो प्रत्येक शरीर वर्गणा वाले तो है, बादर शरीर वर्गणा वाले भी है, बादर निगोद वर्गणा वाले, और बीच में कोई वह उस जाति के परमाणुओं की वर्गणा ही नहीं है, उसको शून्य वर्गणा कहा। अब यहाँ जो सांतर निरंतर में है, सांतर निरंतर में जो रेंज है, मान लेते जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, उसमें लगातार कुछ तो है, फिर बीच में गैप है, और फिर है, फिर गैप है। तो जो गैप है तो उसको अभी हम वर्तमान समय में उसको शून्य कहेंगे, और जो है पुद्गल परमाणु उसको अशून्य कहेंगे। तो जो शून्य रूप है वो कायम शून्य रूप ही रहते हैं क्या, ऐसा प्रश्न है? तो ऐसा नहीं है, नहीं तो उसको अन्य शून्य ही वर्गणा नाम देते ना। यहाँ क्या पूछा, देखो शांत पहली लाइन से, सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणाएं अशून्य रूप है, जो अशून्य है वे अशून्य रूप से ध्रुव है कि अध्रुव है? अशून्य अशून्य ही रहती है कायम, क्या वो शून्य भी हो सकती है? हाँ, तो कहते हैं अध्रुव है, यानी वे शून्य भी हो सकती है, क्योंकि अशून्य रूप से उनका सदाकाल अवस्थान नहीं रहता। सांतर निरंतर वर्गणा की रेंज तो बता दी उन्होंने, ये सांतर निरंतर का जो कुछ जघन्य इतना होगा और ये उत्कृष्ट होगा सांतर निरंतर वालों का, तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो अभी है ना, ये शून्य, ये ध्रुव सॉरी अशून्य रूप से है। बाद में क्या हो सकता है, मान ऐसा हो सकता है कि यहाँ आ गई और फिर बीच में यहाँ पर गैप हो गया और फिर इस तरह से आ गई, ये जो शून्य थी वो अशून्य रूप हो गई और अशून्य थी वो शून्य रूप हो गई, ऐसे भी हो सकता है। उसमें ये सारे ही मिलकर यहाँ से यहाँ तक तो सांतर निरंतर वाली कहलाएंगे, इसीलिए उसको अंतर वाली कही। फिर भी अलग अलग समयों में तो ये सभी पाई जाती है, इसलिए सबका नाम एक वर्गणा रखा। एक विशिष्ट समय में भले बीच बीच में गैप है, परंतु ये हमेशा ही नहीं रहता। यहाँ वाले ऐसे वाले परमाणु भी पाए जाते हैं, ऐसे भी पाए जाएंगे कहीं, इसलिए उसको कहा वो अध्रुव है। जो अशून्य है वो अशून्य रूप से अध्रुव है, हमेशा सदाकाल वो अशून्य ही नहीं रहते। ये जो शून्य है वो सदाकाल शून्य रूप ही नहीं रहते, इसलिए इसका नाम सांतर निरंतर। यानी तीन काल की अपेक्षा बताएंगे तो ये जघन्य से लेकर ये उत्कृष्ट तक की रेंज है। वो शून्य वर्गणा की बात की थी, ये वर्गणा सांतर निरंतर कहलाती है। जो ध्रुव वो शून्य वर्गणाएं है, ये वर्गणा तो है, अभी जो शून्य कह रहे हैं ना, ये इस जाति के परमाणु किसी काल में यहाँ पाए भी जाएंगे, परंतु जो शून्य वर्गणाएं है वैसे कभी भी तीन काल में नहीं पाए जाएंगे। अभी मैं सांतर निरंतर के, इसको शून्य वर्गणा नहीं कहा है। सांतर निरंतर वर्गणाओं में कुछ शून्य रूप से है, कुछ अशून्य रूप से है, उसमें पलटते जाते हैं, वो अशून्य रूप है वो शून्य रूप हो जाते कुछ काल के लिए, इसलिए उसमें दोनों ही टाइप के पाए जाते हैं। तो ये अशून्य है वो कायम अशून्य ही रहते हैं क्या, ऐसा नहीं है। हाँ, किसमें? सांतर निरंतर में, अन्य शून्य में नहीं, अन्य शून्य वर्गणा नहीं, इसका नाम सांतर निरंतर है। इसके अंदर जो शून्य अशून्य रूप है वो तो उसका परिणमन होता रहेगा। देखो फिर सेकंड लाइन, अध्रुव है क्योंकि अशून्य रूप से उनका सदाकाल अवस्थान नहीं रहता, यानी वो तो शून्य रूप भी हो जाती है। सदृश धन वाले सब स्कंदों के विनष्ट होने पर वर्गणा का अभाव होता है। ये सदृश धन वाले उनकी जो कुछ संख्या है ना, तो ऐसी वर्गणा रहेगी नहीं। ये सदृश धन वाले सबको मिलकर हमने ये वर्गणा बताई थी, कभी कभी ये नहीं रहेगी तो वहां उस जाति के परमाणु नहीं भी पाए जाएंगे। तथा एक भी स्कंद रहने पर वर्गणा है ही, ऐसा अर्थ यहां ग्रहण करना चाहिए। ये सांतर वर्गणा निरंतर वर्गणा वाली भी वर्गणाएं बहुत सारी है, और ऐसी एक भी वर्गणा पाई जाएगी तो उसको हम अशून्य कहेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि एक भी वर्गणा नहीं है तो हम कहेंगे वो शून्य। शून्य वर्गणाएं, अभी फिर प्रश्न पूछ रहे, जो शून्य है वर्गणाएं, तो शून्य रूप से क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है, या फिर कहते अध्रुव है, क्योंकि शून्य का अर्थ है परमाणुओं से रहित वर्गणाएं, किंतु उनका शून्य रूप से सदा अवस्थान नहीं रहता। ये वर्गणाएं कभी न कभी उपलब्ध रहती है और कभी कभी नहीं रहती। जब नहीं रहेगी तब हम कहेंगे शून्य है, और जब उतने धन वाले परमाणुओं का समूह होगा तो हम कहेंगे वो है। नीचे की वर्गणाएं संघात से और ऊपर की वर्गणाएं भेद से उस काल में शून्य वर्गणा को अशून्य रूप करती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। अभी हमने देखा था नीचे उतरे ऊपर ने, हमने ये जघन्य और ये उत्कृष्ट देखा, और नीचे की जो वर्गणाएं हैं उनके संघातों से अलग अलग जो वर्गणाएं वो मिल जाएंगी, और यहाँ जो शून्य वो अशून्य हो जाएगी, और इसका भेद होने पर ये जो है वो अशून्य रूप हो सकती है। देखो शून्य वर्गणाएं और अशून्य वर्गणाएं भी वर्गणादेश की अपेक्षा ध्रुव है। अब यहां से हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने रिवीजन की। तो कहते वर्गणादेश किसे कहते हैं, उसका समाधान, वर्गणाओं के संभव सामान्य को वर्गणादेश कहते हैं। अभी उसका समाधान करते हैं। उस वर्गणादेश की अपेक्षा, ये संभव ने पॉसिबिलिटी है ना, वहां पर वर्गणाओं के संभव सामान्य को वर्गणादेश कहते हैं। ये सब हाँ, ये सामान्य रीति से वो है, हाँ तीन काल की अपेक्षा हम उसको सामान्य से है कहेंगे। विशिष्ट काल में भले वो शून्य या शून्य रूप हो जाएगी, कहते उस वर्गणादेश की अपेक्षा सब वर्गणाएं सर्वदा है, इसलिए ध्रुव है। वो सामान्य की अपेक्षा वो हमेशा ही है, ऐसा कहेंगे हम। विशिष्ट काल की बात नहीं है, सामान्य रूप से वो है, क्योंकि सबको जंगलने से लेकर उत्कृष्ट तक हमने उसको सांतर निरंतर वर्गणा नाम दे दिया। जो भव्यों के योग्य प्रत्येक शरीर वर्गणाएं संयोगी और अयोगी जीवों के प्राप्त होती है, वे शून्य भी है और अशून्य रूप भी है। अब आगे बढ़े ना हम, पहले तो हमने सांतर निरंतर तक की बात की थी, जो 15वां नंबर था, उसके बाद का नंबर हम देखते ना, वो 117 नंबर पर हमने देखा था। सांतर निरंतर के बाद शून्य वर्गणा है जो हमेशा ही शून्य रूप ही रहती है तीन काल, यानी ऐसे कोई परमाणु ही नहीं है। और उसके ऊपर कौन सी है, प्रत्येक शरीर वर्गणा। अब प्रत्येक शरीर वर्गणा की बात चल रही है, क्या वो ध्रुव है कि अध्रुव है, हाँ तो यहां पूछते बताते हैं। कि भव्यों के योग्य प्रत्येक शरीर वर्गणाएं सयोगी और अयोगी जीवों के प्राप्त होती हैं। उसको हमने देखा था ना, अंतिम समयवर्ती भव्य या अभी सयोगी और अयोगी हुए हैं, उनके जो प्रत्येक शरीर वर्गणाएं हैं वो ध्रुव है कि अध्रुव है, तो उसमें कहते हैं शून्य रूप भी है और अशून्य रूप भी है, क्योंकि सब जीवों से अनंत गुणे सयोगी अयोगी प्रायोग्य प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थानों में से वर्तमान काल में संख्यात जीव ही उपलब्ध होते हैं। इसका अर्थ देखते हैं, पॉसिबिलिटी की अपेक्षा से प्रत्येक शरीर वर्गणाएं कितनी होगी सयोगी अयोगी की अकेले की, तो हमने वो सारा घटित किया था। क्षपित कर्मांशिक से आया है और अयोगी के अंतिम समय में स्थित है, उसका जिसका मिनिमम पॉसिबल वहाँ सारा संचय है। क्षपित कर्मांशिक क्यों लिया, क्योंकि कर्म बहुत सारे खिपाए हैं, फिर उसके कर्म का पुंज, उसका विश्रसोपच पुंज, तेजस का पुंज, विश्रसोपचार, अवदारिक और उसका पुंज, उसमें से एक एक परमाणु बढ़ाते 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 हमने कितने जीवों से भी अनंत गुणे ऐसे विकल्प देखे थे उसमें। इतने तो सिद्ध या सयोगी अयोगी होते ही नहीं एक समय में, तो तीन काल में भी उसकी संख्या पूरी नहीं होगी। ये जो पॉसिबिलिटी बताई ना, इतने प्रत्येक शरीर वर्गणाएं हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी वो तीन काल के सयोगी अयोगी से भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पॉसिबिलिटीज कितनी है, जीवन से अनंत गुणे, और तीन काल में सिद्ध कितने हो गए, जीव के अनंत विभाग। इसलिए कहते हैं ये तो नहीं होना है। तो वर्तमान काल में कितने, उसमें संख्यात जीव ही है, भले लाखों केवली कहेंगे फिर भी वो संख्यात ही हो गए। यह कहना कि संख्यात जीव वर्तमान काल में सब जीवों से अनंत गुणे प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थानों को भर देंगे ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में विरोध आता है। प्रत्येक शरीर वर्गणाएं जो हमने देखी थी, पॉसिबिलिटी की अपेक्षा अलग अलग कितने हो सकते हैं, हमने देखा एक एक परमाणु के डिफरेंस से कितनी हो सकती है, और वर्तमान में ये जो जीव है वो सब पॉसिबिलिटीज पूरी कर देंगे ऐसा बनता ही नहीं है। भले हमने 14वें 13वें के पहले समय से लेकर 14वें के अंतिम समय तक अलग अलग जीवों की अपेक्षा से अगर बात करेंगे तो भी नहीं होगा ना, क्योंकि इतने असंख्यात जीव नहीं है, प्रत्येक समय पर स्थित वाले जीव भी नहीं है। जो कोई संख्यात जीव है उनमें जो कोई पॉसिबिलिटीज होगी वो सब मिलकर भी इतनी कभी हो ही नहीं सकती। यहाँ जो वर्गणाएं शून्य है वे शून्य रूप से अध्रुव है। क्या कहना चाहते हैं, अभी जो शून्य है, अभी जिनमें ऐसे कोई सयोग अयोगी नहीं है, हो सकता है कभी किसी काल में हो जावे, पॉसिबिलिटीज तो है लिखी है, तो वो तो हमेशा ही शून्य रूप रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अशून्य भी हो जाए। इसलिए कहते शून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि सर्वदा इस वर्गणा को शून्य रूप ही होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अलग अलग जीव किसने कितने ही कर्म खिपाए, औदारिक शरीर का भी संचय किसका कितना है, किसी का कितना है, उसकी अपेक्षा से ये जो पॉसिबिलिटीज वेरिएशंस बताए हैं, स्थान बताए हैं, वो कभी किसी जीव के हो सकते हैं, इसलिए वो हमेशा ही शून्य रूप है ऐसा नहीं कहेंगे। जो वर्गणाएं अशून्य स्वरूप है वे अशून्य स्वरूप से अध्रुव है, क्योंकि उन वर्गणाओं का एक रूप से अवस्थान नहीं रहता, वो भी चेंज होगी, वो अशून्य है नहीं, उसमें कोई जीव है अभी वैसे, तो हमेशा वैसे ही रहेगा ऐसी कोई बात नहीं है। यह संभव की अपेक्षा कहा है, यानी पॉसिबिलिटी बताई है, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा कथन करने पर, यानी एक्चुअली क्या बात है उसकी बात करेंगे, तो सयोगी और अयोगी प्रायोग्य प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थानों में से अनंत वर्गणाएं शून्य रूप से अवस्थित होनी चाहिए। कितने ही ऐसे पॉसिबिलिटीज है अनंत कि जो कभी अशून्य होगी नहीं, शून्य रूप ही रहेगी हमेशा, क्योंकि तीनों ही कालों में सयोगी और अयोगी जीवों के द्वारा नहीं छुए गए अनंत स्थान संभव है। क्योंकि तीन काल में तो अनंत जीव सिद्ध हो गए, और फिर भी ये तो जो हमने पॉसिबिलिटी देखी थी वो तो जीवन से अनंत गुणे हैं, तो कितनी वर्गणा ऐसी अशून्य रूप से ही रहेगी। तथा अभव्यों के योग्य, देखो दो बात अलग अलग बताई, भव्यों के एक योग्य प्रत्येक शरीर और अभव्यों के योग्य प्रत्येक शरीर वर्गणा। तो अभव्यों के योग्य जो प्रत्येक शरीर वर्गणाएं शून्य रूप है, वे शून्य रूप से अध्रुव है। अभव्यों के योग्य यानी अन्य भी जीव, वो पृथ्वी कायिक आदि भी उसमें समझ लेना। भव्यों के योग्य यानी तेरहवें चौदहवें वाले को ही लेना है उसमें। देखो अभव्यों के योग्य जो प्रत्येक शरीर वर्गणाएं शून्य रूप है, वे शून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि शून्य रूप वर्गणाओं का भी उपरिम और अधस्तन वर्गणाओं के भेद संघात से बाद में अशून्य रूप से सद्भाव करना अद्भाव हुआ है, सद्भाव पाया जाता है। यह भी संभव की अपेक्षा कहा है, संभव ने हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा देखने पर शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से अवस्थित है। ऐसी कितनी ही वर्गणाएं हैं जो अभी भी शून्य है और वो तो कायम अशून्य ही रहेगी। हाँ शून्य ही रहेगी, शून्य है वो शून्य ही रहेंगी, क्योंकि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, देव, नारकी, सयोगी और अयोगी, इन असंख्यात लोक प्रमाण सब जीवों के द्वारा अनंत गुणे प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणाओं का व्याप्त करना संभव नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? प्रत्येक शरीर वर्गणाएं एक एक परमाणु के भेद से हमने कितनी देखी, जीवों से, सभी जीवों से अनंत गुणे। और अभी जो हम प्रत्येक शरीर वर्गणाएं अभी वर्तमान में देखेंगे तो कितने हो गए, तो जितने प्रत्येक शरीर ही जीव है उसमें भी वो हम देखते तो अग्नि कायिक आदि जो है वो सब इतने असंख्यात असंख्यात का समूह मिलकर प्रत्येक शरीर वर्गणा बताई है। फिर भी हम उसको जुदे भी लेंगे तो कितने हैं, सारे मिलकर भी असंख्यात में ही जाएंगे, अनंत में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस जहाँ निगोध की अपेक्षा नहीं आती, अन्य कितने भी जीव हम इकट्ठा करेंगे वो असंख्यात ही हो गए। तो ये सारे जो स्थावर है अन्य वनस्पति को छोड़कर वे असंख्यात असंख्यात पाए जाते हैं, असंख्यात लोक है ना उसका संख्या। तो यहाँ क्या क्या लिया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक, देवनार की भी लिए, वे भी असंख्यात में ही पाए जाते हैं, और सयोगी अयोगी को भी ले लिया यहाँ पर प्रत्येक शरीर वर्गणाओं को उसकी संख्या बताने के लिए। तो ये सब मिलकर भी असंख्यात लोक प्रमाण है। और हमने पॉसिबिलिटीज कितनी देखी थी, जीवों से अनंत गुणे। तो कितनी ही वर्गणा जो शून्य है वो हमेशा शून्य ही रहेगी, ये कहना चाहते हैं। अशून्य वर्गणाएं अशून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि जो अशून्य है वो शून्य भी हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गणा द्रव्यों का वृद्धि और हानि के बिना सर्वदा अवस्थान नहीं पाया जाता, यानी उसमें और भी आके मिलेंगे या उसमें से कम भी हो जाएगा। परंतु वर्गणा देश की अपेक्षा सब प्रत्येक शरीर वर्गणाएं ध्रुव है, क्योंकि सांतर निरंतर वर्गणाओं के समान सब प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थानों का किसी भी काल में शून्यपना नहीं पाया जाता। वर्गणा देश ने सामान्य की अपेक्षा बात करेंगे तो सब मिलकर एक वर्गणा कही हमने, प्रत्येक शरीर वर्गणा, तो उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज है उसको तो हम ऐसा नहीं कहेंगे वो शून्य है, उतने तो हो सकते हैं कभी किसी काल में, तो हम कहेंगे वो सारे ध्रुव है कहेंगे, प्रत्येक शरीर वर्गणाएं ध्रुव है कहेंगे, अध्रुव नहीं कहेंगे उनको। अब ये प्रत्येक शरीर वर्गणा की बात हुई, अब बादर निगोद वर्गणा की बात कर। हाँ? गैप, क्योंकि वैसे कोई जीव नहीं पाए जाएंगे इसलिए गैप होगा, परंतु प्रत्येक शरीर वर्गणा है इतनी हो सकती है कि नहीं, पॉसिबिलिटीज की अपेक्षा से इसलिए वहां वर्गणा देश नाम लिया, सामान्य की अपेक्षा पॉसिबिलिटीज यानी वो रेंज उनकी हमेशा बनी रहेगी, यानी कभी भी वो हो सकता है, हो सकने की अपेक्षा वो पाई जाती है, ऐसा कहेंगे, उसको वर्गणादेश का है। शून्यपना नहीं पाया जाता। जैसे सांतर निरंतर वर्गणा में हमने क्या देखा, जो शून्य वो अशून्य रूप हो सकती, जो अशून्य वो शून्य रूप हो सकती, वैसे यहां भी अभी वर्तमान काल में असंख्यात लोक प्रमाण वो है, परंतु पॉसिबिलिटीज में हमने अनंत देखी थी, जीवन से अनंत गुने, तो हो सकता है कि जो अभी उस रूप नहीं है उसमें परमाणु की वृद्धि हो जाए या उसमें से घट जाए, हाँ, और जो शून्य अशून्य रूप हो जाए, अशून्य शून्य रूप हो जाए। अब बादल निगोद वर्गना की बात करें, ये प्रत्येक हो गई। बादल निगोद वर्गनाएं जो कि भव्यों के योग्य, ये भव्य शब्द बराबर करना है, भव्यों के योग्य क्षीण कषाय गुणस्थान में उपलब्ध होती है, वे शून्य रूप होकर शून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि शून्य वर्गणाओं का शून्य रूप से सदा अवस्थान नहीं पाया जाता, यह संभव की अपेक्षा कहा है, पॉसिबिलिटीज की अपेक्षा, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा कथन करने पर शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से ध्रुव है, क्योंकि अभी क्षीण कषाय जीव कितने हैं, तो कहते संख्यात क्षीण कषाय जीवों का सब जीवों से अनंत गुणे क्षीण कषाय प्रायोग्य यानी क्षीण कषाय में हो सकते हैं, ऐसे बादर निगोद स्थानों में तीनों ही कालों में वृत्ति मानने में विरोध आता है। ये जो क्षीण कषाय गुणस्थान में कितने स्थान हो सकते हैं बादर निगोद वर्गणा के, तो हमने ऐसा देखेंगे हम कि जिसने ज्यादा से ज्यादा कर्म खिपाया है, क्षपित कर्मांशिक रूप से जो क्षीण कषाय में आया है, उसमें भी पहले देखा था ना, बहुत सारी उपशम श्रेणी भी चढ़कर आया था, फिर यहाँ क्षपक श्रेणी चढ़ा है वगैरह वगैरह, तो ऐसे जीव को वो वर्गणाएं कम से कम है। अब उसमें एक एक परमाणु को बढ़ाते हुए उन्होंने सब साबित किया था। क्षीण कषाय के अंतिम समय में पहले बादर निगोद मिनिमम पॉसिबल, वहां भी अलग अलग जीवों के द्वारा अलग अलग नंबर ऑफ परमाणु हो गए, फिर हम उपांत समय में आएंगे, फिर उसके पहले समय में आएंगे, इस तरह से वहां उसकी वृद्धि उन्होंने घटित करके दिखाई थी। इसलिए कहते हैं ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है, अनंत है, और क्षीण कषाय जीव कितने हैं, संख्यात है। इसलिए यह कितने स्थान हमेशा ही शून्य रूप रह सकते हैं। एक सौ अड़तीस पृष्ठ सेकंड लाइन, तथा शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से अध्रुव भी है। ये शून्य वर्गणाएं ने बीच वाली वर्गणा उसकी बात नहीं है, इसी में जो शून्य अशून्य रूप से, क्योंकि कोई भी शून्य स्थान किसी भी समय अशून्य रूप होकर उपलब्ध होते हैं। अब अशून्य वर्गणाएं अशून्य रूप से अध्रुव है, ये जो कौन से बात चल रही है, बादर निगोद वर्गणा में से शून्य अशून्य की बात चल रही है, क्षीण कषाय वाले के, क्योंकि क्षीण कषाय प्रायोग्य बादर निगोद वर्गणाओं का सर्वदा अवस्थान नहीं पाया जाता। यदि उनका अवस्थान होता है तो किसी भी जीव को मोक्ष नहीं हो सकता, अवस्थान यानी कायम रहना, तो क्षीण कषाय में बादर निगोद वर्गणा है वो कायम रहिए, तो कहते वो तो तेरवा आते ही वो चली जाती है ना, तो कहेंगे वो कायम है तो वो तेरवा गुणस्थान ही नहीं होगा, तो मोक्ष नहीं हो सकेगा, कहते हैं, क्योंकि क्षीण कषाय में बादर निगोद वर्गणा के रहते हुए केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने में विरोध है। ओहो, एक वर्गणादेश बताया, क्योंकि सामान्य से कथन किया उन्होंने, पॉसिबिलिटीज की अपेक्षा से वो सभी हो सकती है। अभव्यों के योग्य जो शून्य वर्गणाएं हैं, वे शून्य रूप से अध्रुव है। अभी अभवियों के योग्य जो बादर निगोद वर्गण ने अन्य जीवों की बात मान ली, वे शून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि शून्य वर्गणाओं का भी उपरिम और अधस्तन वर्गणाओं के भेद संघात से कालांतर में अशून्यपना पाया जाता है। ये उपरिम और नीचे ने उसी की रेंज लेना, बादर निगोद वर्गणा की ही लेना है, भेद संघात बताए ना, उसी में जो शून्य अशून्य उसकी बात है, यानी वो बादर निगोद वर्गणा वाले के ऊपर की शून्य वर्गणा उसको नहीं लेना है, वो तो कायम शून्य रूप से ही रहेगी, उसकी बात नहीं है। ये जो स्वयं बादर निगोद वर्गणा है ना, बीच बीच में अभी कुछ है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है मगर है नहीं है, फिर भी वो भेद से और संघात से वो बीच वाले पॉसिबल, ऐसे अन्य भी भेद हो सकते हैं, जो शून्य वो अशून्य हो गया, अशून्य वो शून्य शून्य हो जाएंगे। यह संभव की अपेक्षा कहा है, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा कथन करने पर शून्य वर्गणाएं ध्रुव भी है। कोई कोई ऐसी वर्गणाएं होगी तो हमेशा अभी तक तो वो शून्य रूप से ही रही है, पॉसिबिलिटी उसकी भी है, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण बादर निगोद वर्गणाओं के सब जीवों से अनंत गुणे सेचीय स्थानों में, सेचीय स्थान यानी वो संभव पॉसिबिलिटीज, पहले शब्द आया था ना संभव, संभव की अपेक्षा, उन स्थानों में वो कितने हैं सब जीवों से अनंत गुणे, तो जीवों से अनंत गुणे ऐसे सेचीय स्थानों में अतीत काल में वो मैं करना उसको, हाँ ऊपर गया उसका, अतीत काल में भी वृत्ति होने में विरोध है। खुलासा इस प्रकार है, एक अतीत समय में यदि असंख्यात लोक प्रमाण बादर निगोद स्थान पाए जाते हैं तो सब अतीत काल में कितने प्राप्त होंगे। इस प्रकार फल से गुणित इच्छा को प्रमाण से भाजित करने पर अतीत काल से असंख्यात लोक गुणे बादर निगोद वर्गणाओं में अशून्य स्थान प्राप्त होते हैं, अन्य सब स्थान शून्य ही है। अतीत काल कितना है, अनंत है, और जीव कितने हैं, उससे ज्यादा है, नहीं समझे, हम तो गणित कैसा अभी तक सीखे हैं, जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अनंत तीन काल के समय अनंत अनंत गुणे, यानी यहाँ तीन काल की बात नहीं, अतीत काल की बात है। अतीत काल के समय कितने होते हैं, जीवों की संख्या के अनंत वे भाग होते हैं, इसलिए ये यहाँ कहा, एक एक समय में भी वो असंख्यात लोक प्रमाण ले लेंगे तो भी जितना अतीत काल हुआ है उसके असंख्यात गुणा ही हो जाएगी संख्या, पॉसिबिलिटीज की भी अपेक्षा से, और यहाँ पॉसिबिलिटीज टोटल कितनी है, जीवन से अनंत गुणे, असंख्यात भी गुणे नहीं। अन्य सब स्थान शून्य, इसलिए शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से ध्रुव है, ध्रुव ने ध्रुव भी हो सकती है या ध्रुव भी रही है अभी तक। शंका, विग्रह गति में विद्यमान बादर निगोद जीव क्या बादर निगोद वर्गणाओं में गर्भित है या प्रत्येक शरीर वर्गणाओं में गर्भित है, क्या प्रश्न पूछा, अभी विग्रह गति में है, अभी उन्होंने शरीर ग्रहण नहीं किया है ना, तो उसको किस में लेना, कहते प्रत्येक शरीर वर्गणाओं में तो गर्भित हो नहीं सकते, क्योंकि एक तो निगोद जीवों को प्रत्येक शरीर जीव होने में विरोध है, वो तो प्रत्येक शरीर ही है ही नहीं, तो उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा ऐसा नहीं कह सकते। दूसरे, प्रत्येक शरीर वर्गणाएं असंख्यात लोकमात्र प्रमाण को छोड़कर अनंत हो जाएगी, क्योंकि बादर निगोद है ना, तो निगोदों को अगर हम प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे तो वो तो निगोद अनंत है, तो उनकी अनंत हो जाएगी, इसलिए बादर निगोद वर्गणा वर्तमान काल में अनंत होनी चाहिए। कितनी देखी हमने, लोक प्रमाण असंख्यात ही देखी, क्योंकि एक एक निगोद का अलग अलग अपना अपना नहीं होता, बादर निगोद वर्गणा नहीं होती है, बादर निगोद जिस शरीर के आधार से रहते उस जीव का भी जो प्रत्येक शरीर है प्रतिष्ठित प्रत्येक है ना, तो उसके भी लेने हैं और इन सभी जीवों का मिलकर लेना है। तो सभी के मिलकर एक पिंड हुआ है, एक स्कंद हुआ है, उसको वर्गणा कहा है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि विग्रह गति में भी एक बंधन में बंधे हुए अनंतानंत बादर निगोद जीवों की एक बादर निगोद वर्गणा बन जाती है। क्या कहा है? विग्रह गति में अभी शरीर नहीं धारण किया है परंतु वो सब समूह रूप से इकट्ठे है अनंत जीव, उनके कारमान और तेजस तो है और उसके अपने अपने विसर सोपचे, उसकी भी बादर निगोद वर्गणा संज्ञा बताई है। इसलिए वर्तमान काल में बादर निगोद वर्गणाएं असंख्यात लोक प्रमाण ही होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। समूह रूप से है अनंत जीव, ऐसे समूह रूप से है। विग्रह गति एट अ टाइम अनंत जीव उसमें मर जाते हैं ना, वो अन्य अन्य जगह उत्पन्न हो गए, फिर एक जीव बाहर निकल। एक जीव अन्य से मरकर वहां आया है परंतु वहां आते समय भी अनंत जीवों का समुदाय इकट्ठे जन्मते, हमने कहा है। तो विग्रह गति में वहां आते समय भी सब इकट्ठे होकर आते हैं ना, कहीं कहीं से अन्य से, इसलिए उसकी एक वर्गणा कही है। देखो एक एक छुटकर अन्यत्र जाएगा तो उसको हम साधारण, हाँ बाद इतर निगोद में डायरेक्ट तो नहीं आता, इतर निगोद कौन आएगा? हाँ जो एक इंद्रियों में से आएगा, एक नहीं आएगा, वहां भी अनंत होगे। इतर निगोद भी, निगोद शरीर में अनंत जीव उत्पन्न होते हैं ना, इतर निगोद में भी एक एट अ टाइम अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। वो गया परंतु अन्य अन्य अनंत होगे कि नहीं होगे? निगोद में से ही मरकर, इतर निगोद में से ही मरकर निगोद में उत्पन्न होने वाले, तो उनके साथ ये भी जुड़ गया। यही तो कहते हैं, वहां तो एक एक अकेला अकेला नहीं रहता, वो भी अनंत जीवों का समुदाय पाया जाता है। अकेला होगा तो उसको अकेला ऐसा अलग गिना नहीं है उसके, क्योंकि एट अ टाइम जन्मते हम कहते हैं तो वो विग्रह गति में से वो समूह रूप से आते हैं, ऐसा कहा उस। तो हम कोई एक गाड़ी ट्रेन पकड़नी है तो कौन कहां कहां से आया, वो इकट्ठा हो गया स्टेशन पर, ऐसा होता होगा कुछ विग्रह गति में? यहाँ लिखा ना देखो, विग्रह गति में भी एक बंधन में बंधे हुए अनंतानंत बादर निगोद जीवों की एक बादर निगोद वर्गणा बन जाती है। बन जाती है ना, वो तो अभी एक समय में होने वाला कार्य है तो उस कैसे कहेंगे क्या ज्वाइन हो जाते सब, क्योंकि सब मिलकर एक शरीर में उत्पन्न होने वाले हैं तो रास्ते में सब मिल जाते होंगे। वो सीधे आए हैं, हाँ साथ में हो जाते हैं, कोई तीन समय से आए हैं वहाँ, कोई दो समय से आए हैं, कोई कहाँ कहाँ से आए ना अन्य अन्य। ये तो क्या है, हम तो क्षोभम ज्ञानी है तो इमेजिन ही कर सकते क्या हो सकता है। निर्णय नहीं, हाँ कल्पना करने के। हाँ अभी यहाँ पढ़ने की बात, पहले तो ये बात मालूम नहीं थी ना। हाँ देख अभी आगे, ये समाधान वाला दूसरा पैराग्राफ। शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से अध्रुव भी है। कौन से शून्य रूप से? ये बादर निगोद वर्गणा की बात चल रही, इसमें से जो शून्य थी, क्योंकि उपरिम और अधस्तन वर्गणाओं के भेद संघात से शून्य वर्गणाएं भी कालांतर में अशून्य रूप होकर उपलब्ध होती हैं। अशून्य वर्गणाएं अशून्य रूप से अध्रुव है क्योंकि वर्गणाओं का एक रूप से सदा अवस्थान नहीं पाया जाता, परंतु वर्गणा देश की अपेक्षा तो सब वर्गणाएं ध्रुव है। सब वर्गणाएं, अभी बादर निगोद की बात चल रही है, उसकी जो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो लिमिट बताई है उसमें से वो तो हमेशा ही उसको बादर निगोद वर्गणा कहेंगे, उस रूप से वो ध्रुव है क्योंकि अनंत अनंत वर्गणाएं सर्वदा उपलब्ध होती है। अब सूक्ष्म निगोद वर्गणा की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म निगोद वर्गणाएं शून्य रूप से अध्रुव है, उसमें भी कोई शून्य रूप से रहती है, वो शून्य अशून्य होती है क्योंकि शून्य वर्गणाओं का सर्वदा शून्य रूप से ही रहना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह संभव की अपेक्षा कहा है, पॉसिबिलिटीज क्या है, वो शून्य अशून्य हो जाए, अशून्य शून्य हो जाए, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा कथन करने पर शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से ध्रुव भी है। कितनी ऐसी वर्गणाएं कि अभी तक वैसी पाई नहीं गई है, क्योंकि वर्तमान काल में असंख्यात लोक प्रमाण सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं के द्वारा, देखो सूक्ष्म निगोद जीव कितने हैं, अनंत है, परंतु ये एक एक शरीर में अनंत जीव है, एक निगोद शरीर में सूक्ष्म की बात है। अभी ये प्रतिष्ठित वाले आधार से रहने वाले ये निगोद नहीं है, बादर निगोद नहीं है, वो तो जल में स्थल में आकाश में कहीं भी पाए जाएंगे, फिर भी वहां उनके असंख्यात शरीरों का समूह इकट्ठा रहेगा, निगोद शरीर, अनंत जीव एक शरीर में, सूक्ष्म निगोद, ऐसे असंख्यात जीव, असंख्यात शरीर अनंत जीव हो जाएंगे, असंख्यात शरीरों का समूह हो सकता है, जैसे जल के एक बिंदु में जल का एक कितने हैं, असंख्यात, वैसे वहां सूक्ष्म निगोद भी जो है उनका भी जो जत्था होगा, समूह होगा, उसका मिलकर एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा कहने में आएंगे। तो ऐसे कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण सूक्ष्म निगोद वर्गणाएं पाई जाती हैं, उसके द्वारा पूरे अतीत काल में भी सब जीवों से अनंत गुणे स्थानों का पूरा करना संभव नहीं है। पॉसिबिलिटीज कितने स्थान है, तो जीवों से अनंत गुणा, कारण बादर निगोद जीवों के समान कहना चाहिए, जो कारण की मीमांसा वहां की थी वैसे यहां भी समझना, वे अध्रुव भी है, यानी ध्रुव कहा परंतु अध्रुव भी है, क्योंकि उपरिम और अधस्थन वर्गणाओं के भेद संघात से, स के ऊपर बिंदी लगाना, शून्य वर्गणाएं भी कालांतर में अशून्य रूप होकर उपलब्ध होती है। अशून्य सूक्ष्म निगोद वर्गणाएं अशून्य रूप से अध्रुव है क्योंकि सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं का अवस्थित रूप से अवस्थान नहीं पाया जाता, कायम वो रहेगी वैसे की वैसी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें भी भेद संगत हो जाएंगे। अब महास्कंद द्रव्य वर्गणा की बात है, बीच बीच वाली जो शून्य वर्गणा है ना, हमेशा कायम वो ध्रुव रूप से शून्य ही रहती है, ऐसे कोई परमाणु ही नहीं पाए जाते, उसकी तो बात ही नहीं लिए क्योंकि वो तो अस्तित्व में ही नहीं है। शून्य रूप महास्कंद द्रव्य वर्गणाएं, अभी महास्कंद द्रव्य वर्गणा को शून्य क्यों कहा, महास्कंद द्रव्य वर्गणा की भी रेंज बताई, ये जघन्य और ये उत्कृष्ट, तो वर्तमान काल में कोई एक होगा ना, महास्कंद एक ही पाया जाता है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज उसमें एक 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 प्रदेश बढ़ते हुए भी हम पॉसिबिलिटीज बताएंगे, वो पॉसिबिलिटीज तो कितनी हो जाएगी, तो उसमें कितनी ही तो शून्य रूप रहेगी, उसको कहते हैं शून्य रूप महास्कंद द्रव्य वर्गणाएं शून्य रूप से अध्रुव है क्योंकि शून्य वर्गणाओं को शून्य रूप से ही रहना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह संभव की अपेक्षा निर्देश किया है, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा कथन करने पर शून्य वर्गणाएं ध्रुव भी है क्योंकि पॉसिबिलिटीज इतनी है, और ये ध्रुव मान लेते महास्कंद जो प्रत्येक समय में अलग अलग स्थान भी ग्रहण किया तो भी कितने हो गए, जितने अतीत कालों के समय हो चुके उतने हो गए पॉसिबिलिटीज की अपेक्षा देखेंगे तो। तो शून्य वर्गण ध्रुव भी है क्योंकि अतीत काल के प्रत्येक समय में एक एक महास्कंद स्थान के उत्पन्न होने पर भी, यानी हर समय वाला जो महास्कंद है वो अलग अलग परमाणुओं के नंबर ऑफ परमाणु वाला अगर हम मान लेते तो भी हो सकता है कि उतने के उतने परमाणुओं का भी बार बार बने, परंतु हम समझने के लिए मानेंगे कि अलग अलग ही बना है हर समय। तो भी अतीत काल में अतीत काल मात्र ही अशून्य स्थान प्राप्त होकर शेष सब जीवों से अनंत गुणे महास्कंद सेचिय स्थान होते हैं। जो पॉसिबिलिटीज कितनी है, सभी जीवों से अनंत गुणे, और अभी तक कितने हो चुके हैं समय अतीत काल जो जीवों की से असंख्य सॉरी अनंत विभाग सेचिय स्थान है वो पॉसिबल स्थान होते क्योंकि उनका शून्य रूप से अवस्थान पाया जाता है। अब कहते हुए अध्रुव भी है क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है उसमें, क्योंकि भेद संघात के द्वारा किसी भी काल में शून्य वर्गणाएं भी अशून्य रूप होकर उपलब्ध होती है। जो अभी तक जितने परमाणुओं का महास्कंद नहीं बनना है ऐसा भी बन सकता है कभी भी। अशून्य वर्गणा में अशून्य रूप से अध्रुव है, वर्गणा में का वर्गणाएं वर्गणाएं चाहिए असुन्नाओ, ये सब जगह वर्गणा यही किया उन्होंने, वर्गणाएं वो मे किया है ना वो ए करना उसको। अशून्य वर्गणाएं अशून्य रूप से अध्रुव है क्योंकि महास्कंद वर्गणाओं का सर्वदा एक रूप से अवस्थान नहीं पाया जाता। इसी प्रकार नाना श्रेणी ध्रुव अध्रुव अनुगम का भी कथन करना चाहिए क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार ध्रुवाध्रुव अनुगम अनुयोग द्वार समाप्त हुआ, यानी कौन सी ध्रुव है कौन सी अध्रुव है उसकी बात की। अब एक श्रेणी वर्गणा सांतर निरंतर अनुगम की अपेक्षा, हमने देखा था ना आगे वाला 117 पृष्ठ पर देखा था हमने, आगे वाला अनुयोग द्वार नहीं वो 117 में नहीं देखा 53 पर देखा था, हाँ हाँ 75 नंबर का सूत्र वर्गणा सांतर निरंतर अनुगम। तो उसमें उन्होंने एक श्रेणी वर्गणा की बात की, उसकी अपेक्षा परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा से लेकर ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा तक क्या सांतर है रह गया, क्या निरंतर है या क्या सांतर निरंतर है। देखो हमने पहले वर्ग पहले क्या देखा था अनुवर्गणा, एक श्रेणी की बात है ना, फिर द्विप्रदेशी संख्यात में द्विप्रदेशी तीन प्रदेशी चार प्रदेशी पांच प्रदेशी कंटिन्यूस ऐसे वो संख्यात अनुवर्गणा कहलाएगी, फिर असंख्यात अनुवर्गणा अनंत अरुण एक एक प्रदेश की वृद्धि वाले हमने सभी स्थान देखे थे, उसमें कहीं बीच में शून्य अशून्य ऐसे कुछ थे ही नहीं। कहां तक, ध्रुव स्कंद तक, यानी कारमान वर्गणा के बाद एक ध्रुव स्कंद वर्गणा थी वहां तक, ये सारे कैसे निरंतर एक एक प्रदेश वृद्धि वाले स्थान है इसलिए उसको कहा वो निरंतर है। ये सभी स्थान निरंतर है क्योंकि अंतर के बिना मुक्ता फलों की पंक्ति के समान वे अवस्थित हैं। अब अचित्त अध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणाएं क्या सांतर है, सान्नर हुआ है, सांतर है या निरंतर है। या क्या सांतर निरंतर है, तो कहते हैं शांत निरंतर है, क्योंकि कहीं पर निरंतर रूप से और कहीं पर शांतर रूप से यह सर्वत्र रह गए हैं, रह गए हैं। वे वर्गणाएं उपलब्ध हैं। पुनः सचित्त कहाँ से शुरू होती है? वो प्रत्येक शरीर वर्गणा से सचित्त होती है। शून्य वर्गणाओं की बात करने से तो कुछ नहीं रहा, तो अभी कौन सी रही? वो शांत निरंतर वाली रहेगी। देखो शांत निरंतर है क्योंकि कहीं पर निरंतर रूप से और कहीं पर शांतर रूप से वे वर्गणाएं उपलब्ध होती हैं। पुनः उस शांत निरंतर वर्गणा की रह गया यहां भी आचार्यों के विरोध रहित उपदेश के बल से यह प्ररूपणा करते हैं यथा। अब ये प्ररूपणा बताने वाले हैं। उनमें जिन वर्गणाओं के दोनों ही पार्श्व भागों में शून्य वर्गणाएं हैं और मध्य में एक ही वर्गणा अशून्य रूप है, उनकी स्थापित की गई शलाकाएं स्तोक है। क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने ये देखा ना, ये अशून्य है और दोनों ओर उसके शून्य है, ये भी अशून्य दोनों ओर उसके शून्य है। अभी इसको हम गिनेंगे, इसको शलाका कहेंगे, तो उनकी शलाकाएं कम है। किसके? जिसके दोनों ओर शून्य है। जिन वर्गणाओं की दोनों पार्श्व भागों में शून्य वर्गणाएं हैं और मध्य में निरंतर दो दो अशून्य वर्गणाएं हैं, उनकी स्थापित की गई शलाकाएं अनंत गुणी हैं। यानी वो दो एक साथ लिए हैं और दोनों ओर शून्य रहेगी, तो ये उससे भी अनंत गुणे हैं, ऐसा कहते हैं। यानी ऐसे कोई डेफिनेट इतनी स्पेस ही छोड़नी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी यहाँ शून्य है और यहाँ दो अशून्य हो गई एक साथ और ये शून्य है, वो उससे भी अनंत गुणी होगी। जिन वर्गणाओं के वर्गणाएं ने उसकी विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणु एक प्रदेश वृद्धि के लेना है, वहां पर कोई ऐसी भी हो सकती है ना, हमको रेंज लेनी है। मान लेते हो अभी हम छोटी संख्या लेंगे, ये 100 से लेकर हम ऊपर चले जाएंगे, तो 101 200 वगैरह वगैरह हम देखेंगे, बीच में से शुरू करेंगे। अभी यहाँ एक ही वर्गणा है ऐसी बीच वाली, कौन सी? 110 नंबर वाली लेंगे। उसके पहले भी गैप थी, शून्य थे और बाद में है, ये 110 वाली एक है, एक ही वर्गणा है, और फिर ऊपर भी गैप है उसके। ऐसी जितनी वर्गणा होगी, कभी कभी क्या होगा, यहाँ 110 वाली भी होगी और 111 भी वाली होगी, ये दो वर्गणाएं पाई जाएगी और दोनों ओर गैप होगा, वो उससे भी अनंत गुणी होगी। एक विशिष्ट ग्रुप को हम एक वर्गणा कह रहे हैं ना, जैसे द्विप्रदेशी कहा, तीन प्रदेशी कहा, चार प्रदेशी कहा, ऐसे विशिष्ट एक्स प्रदेशी वाली ले लेंगे हम। हो सकता है उसके पहले भी गैप है, यानी एक्स माइनस वाली भी, एक्स माइनस एक वाली भी कोई नहीं है और एक्स प्लस एक वाली भी कोई नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम? वो बीच वाली अशून्य है और दोनों ओर शून्य है। अब यहाँ एक्स प्लस एक्स भी है, एक्स प्लस वन भी है और उसके दोनों ओर गैप है, हाँ वो अनंत गुणी है। चौथी लाइन अंत में, हाँ जिसकी दोनों ओर शून्य है, ऐसी दो अध्रुव यानी अशून्य लिए। अभी मैंने कहा ना एक्स और एक्स प्लस वन, ये दो तो है और उसके दोनों ओर की नहीं है। पहले कौन सी ली थी? एक्स वाली ली थी, उसके दोनों ओर गैप थी, हाँ यानी वो एक प्रदेश यानी x x प्रदेश वाली भी वर्गणा है और x प्लस वन प्रदेश वाली भी वर्गणा है, परंतु x प्लस टू वाली नहीं है और x माइनस एक वाली भी नहीं, और उसके नीचे भी कितनी भी तो नहीं होगी। तो दो वर्गणाएं हैं, ऐसा कहा, बीच वाली दो वर्गणाएं हैं। अब जिन वर्गणाओं के दोनों ही पार्श्वभागों में शून्य वर्गणाएं हैं और मध्य में निरंतर तीन तीन अशून्य वर्गणाएं हैं, उनकी स्थापित की गई शलाकाएं अनंत गुणी, ऐसे कितनी वर्गणाएं पाई जाएगी, वो भी अनंत। इस प्रकार, हाँ, अशून्य को कहा ना, तो अशून्य वाली एक ही थी पहले, 110 वाली एग्जिस्टिंग थी, उसके दोनों ओर गैप था। अभी कितने का गैप है वो छोड़ दो, अभी क्या निरंतर यानी 110 वाली 111 वाली हम मान लेते, 112 113, तो चार वर्गणा निरंतर हो गया और उसके दोनों की ओर गैप है। ये जो इनकी संख्या ऐसे, ये अशून्य वाली कितनी है टोटल, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, सांतर निरंतर वर्गणा में ऐसी वर्गणाएं कितनी पाई जाएगी। पहले तो सिंगल सिंगल वाली देखी थी, फिर दो दो एक साथ है, नहीं कंटिन्यूअस दो ली, अब कंटिन्यूअस तीन ली, कंटिन्यूअस चार ली, वो अनंत गुणे हो रही है अभी। उसकी ऐसी नंबर ऑफ वर्गणाएं कितनी पाई जाएगी टोटल, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक ऐसी कितनी पाई जाएगी, तो उसको अनंत गुणा का पॉसिबिलिटी सब ऐसे बता रहे हैं। देखो इस प्रकार ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर कल इसको लेंगे आगे, फिर पढ़ेंगे। हाँ, इस प्रकार चार चार, पांच पांच, छ छ, सात सात, आठ आठ, नौ नौ, दस दस। अब इसी पद्धति से संख्यात संख्यात और असंख्यात असंख्यात जो निरंतर वर्गणाएं हैं, ये इसका नाम ही क्या है, सांतर निरंतर। अब ये जो निरंतर वर्गणाएं भी कंटिन्यूस 110 से लेकर मान लेते 200 तक की निरंतर पाई जाएगी, और फिर ऊपर और नीचे गैप पाया जाएगा, उनकी अलग अलग स्थापित करके, अलग अलग करके स्थापित की गई शलाकाएं अनंतर अधस्तन शलाकाओं से पृथक पृथक अनंत गुणी है। हर एक की अपनी अपनी अनंत अनंत गुणी है, पृथक पृथक अनंत गुणी कहा ना, नीचे की वो दो वाली थी उससे तीन वाली जो है वो अनंत गुणी है, तीन वाली से चार चार वाली अनंत गुणी है, इस तरह अनंतर दोनों पार्श्व भागों में शून्य वर्गणाएं होकर मध्य में जो निरंतर अनंत वर्गणाएं हैं उनकी स्थापित की गई शलाकाएं अनंत गुणी है। अभी पहले तो हमने असंख्यात तक देखे, अभी लगातार अनंत वाले भी ऐसे लेना वर्गणाएं, अनंत वर्गणाएं निरंतर है और दोनों ओर शून्य है। इसी प्रकार अनंतानंत वर्गणाओं की स्थापित की गई शलाकाएं अनंतर अधस्तन अधस्तन शलाकाओं से अनंत गुणित क्रम से अनंतर स्थान को जाती है। यानी मान लेते हैं पहले वाली ऐसी कितनी थी वर्गणाएं, 110 से लेकर हमने 210 तक थी, 100 थी निरंतर, 100 थी, फिर निरंतर असंख्यात हो गई, निरंतर अनंत हो गई, ऐसे निरंतर अनंत वाली भी वर्गणाएं कितनी है, तो अनंत है। तदनंतर ऊपरी अनंत वर्गणाओं की दोनों दिशाओं में शून्य वर्गणाओं की स्थापित की गई शलाकाएं अनंतर अधस्तन अधस्तन शलाकाओं से असंख्यात गुणी होकर अनंत स्थानों के व्यतीत होने तक जाती है। ये जो शून्य जो है ना, शून्य वाले स्थान, वो असंख्यात गुणा है, और वो बीच वाले जो अशून्य वाले है वो अनंत गुणा होते थे। इसकी बात कल ही लेंगे हम। पैराग्राफ भी बढ़ाए और ये कल समझ कर फिर आगे बढ़ेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नऊ सदा देत हो। अश्विन भाई।